काल हैं, हम अपनी जन्मभूमि मथुरा छोड़ करके समुद्र में गुजारा कर रहे हैं, क्या इसको छेली कहते हैं। तो कभी कभी राजर्षि भरत उसके साथ भी छेली करते थे। छेली में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, संस्कृत में कहते हैं रे मूढ़, तो बोलते थे राजर्षि भरत झूठ मूठ के ऊपर से, रे मूढ़ त्वाम पुष्य तो तुमको कोसते कोसते में स्मरण कीर्तनादि नित्य कीर्तन न निर्वाहती, मेरा स्मरण कीर्तन कृष्ण का निर्वाहित नहीं होता, सब छूट रहा है, इसलिए तब तुम मया त्यक्त हो, मेरे द्वारा त्यक्त होकर जथेष्टम इत जाए, तुम जहां जाना हो चले जाओ, तुम जाओ जहां जाना हो चले जाओ, आज से तुमसे हमारा कोई मतलब नहीं रहा। मैं मजाक में कहता था, ये कह रहा है तो छेड़ी में कहता था, तो ऐसा कह करके मृषा ही मैं आंख बंद करके उस समय दिन डूब जाता था। अब मुझे कृष्ण की भक्ति करनी है और स्मरण करना है, तुमसे कोई मतलब नहीं। तो मृषा समाधि ना आमिलित दृश्यम, झूठी समाधि में मैं आंख बंद करके बैठता हूं। तो उस समय प्रेम शरण भेण, शरण कहते हैं कोप को, प्रणय कोप से प्रेम संगम भेण, तो उस समय वो हरिण का बच्चा प्रेम से क्रुद्ध हो जाता है, प्रेम को, और चकित चकित आगत्य, चकित चकित होकर के आगत्य मेरे पास निकट आकर के त्रिषद अपरुष, अपरुष मतलब कोमल, त्रिषद का अर्थ होता है जल की बूंद, उसकी सिंह जो है वो जल की बूंद के समान कोमल है, और उस कोमल विषाराग्रण, विषाण मतलब सिंह के अग्रभाग से लूठती मुझे खुजलाता है, धक्का देता है, मुझे तो कहीं हरिण की सिंह जल की बूंद के समान कोमल होती है, वो तो बहुत कठोर होती है, लकड़ी जैसे है कि नहीं, हरिण का जो सिंह होता है वो बहुत कठोर होता है, लेकिन जहां शक्ति होती है तो वो अब कठोर नहीं दिख रहा है, तो जल की बूंद उसे कह रहे हैं, उसका छूना बहुत कोमल लग रहा है। अब कोमल में जल की बूंद से कोमल वस्तु तो इस दुनिया में और कुछ है नहीं, नहीं तो और उदाहरण देते त्रिषद अपरुष, जल की बूंद के समान कोमल। इस वाक्य पर हमें एक घटना याद आ जाती, एक श्लोक याद आ जाता है कि एक व्यक्ति अपनी पत्नी को या प्रिया को मना रहा था, रूठ गई थी, तो उसके चरण पर पड़ता था तो वो कभी कभी अपने चरणों से प्रहार कर देती थी, वहां तो कपटी तुम पर कोई विश्वास नहीं है, वो चरण से मारती, जनरल व्यवहार है प्रेमियों का। तो वो कहता है दासे कृतागसित भक्त, दासे कृतागसित भवे थे, नहीं दासे कृतागसित भवे प्रभु राम पाद प्रहार उचित, छह श्लोक है कि हे प्रिय, जब कोई सेवक गलती कर देता है तो स्वामी अगर उसे पैर से मारे तो यह बिल्कुल उचित है, इसके विषय में मैं तुमको दोष नहीं देता, इसका मुझे कोई दुख नहीं है कि तुम अपने पदाघात से मुझे मार रही हो, क्योंकि तो स्वाभाविक है, यदि दास गलती कर दिया तो प्रभु मारेंगे सुधारने के लिए, तो ठीक है, लेकिन मुझे दुख किस का बात का है कि उद्योग कठोर उल्कन कंट काग्रही जब खिप देते तव पदम इतिशा व्यथा में, लेकिन जब तुम मारते हो हमारे देह पर तो हमारे शरीर में रोमांच हो जाता है, हमारे रोड़े खड़े हो जाते हैं, तो हमारा शरीर कंटक जैसा हो जाता है, और तुम पुनः मारती हो तो मुझे बहुत दुख होता है कि तुम्हारे कोमल कोमल चरणों में एक कांटे जैसे घाव लगता होगा, इसका मुझे दुख होता है, मुझको मार रही हो इसका मुझे दुख नहीं है, दुख होता है कि तुम्हारे कोमल चरणों में हमारे शरीर का रोमांच कांटे जैसे चुभता होगा। ये बात क्या है, इसे कालिदास ने लिखा है अपने साहित्य में, तो इस तरह का वाक्य इसलिए कहा जाता है कि वास्तव में जब जिसके प्रति प्रिय बुद्धि हो जाती है वो कुछ भी करे तो प्रिय लगता है, वो जो पहनता है वही अच्छा लगता है, जो खाएगा जैसे चलेगा या चलेगी वही अच्छा लगता है। तो राजर्षि भरत के जीवन में हरिण के अलावा कोई सुखद वस्तु है नहीं, प्रिय वस्तु है नहीं, तो उसकी कठोर सिंह भी जल की बूंद लग रही है। तो कह रहे हैं कि आएगा, क्योंकि मैं पहले व्यवहार देख चुका हूं, पहले भी ऐसे रूठता था, मिथ्या समाधि में बैठता था तो विश्वास करके मुझे धक्का देता था, आता था, कई बार ऐसा हुआ है, तो इस बार भी वो आएगा, विश्वास है। इस तरह सांत्वना ले रहे हैं। और फिर कह रहे हैं कि वो केवल राजकुमार ही नहीं है, वो ऋषि कुमार भी है, ऋषि कुमार। ऋषि कुमार बहुत शांत रहता है, किसी साधु का बच्चा बहुत शांत रहता है, ऋषि मुनि वो वेद पढ़ता है, वो चंचल नहीं होता है। तो कह रहे हैं कि कभी कभी आसादित हविषि बरहिषि दूषिते, आसादित हविषि बरहिषि, कभी मैं कुश की चटाई पर, कुश पर हवि रखता था हवन करने के लिए, तो आकर के वो दांत से उसको दूषित कर देता था, या चटाई को दांत से खींच लेता था तो हवी इधर उधर बिखर जाती थी। तो उस समय मैं कहता था, अरे किमिति, ये क्या कर रहे हो? कहते मैं इसको डांटता था, मेरा हवी से या मेरे पूजन की सामग्री को खींचकर इधर उधर कर देता था, तो मैं डांटता था। और जब मैं डांटता था तब वह ऋषि कुमारवत, वो ऋषि के बच्चे जैसे शांत हो जाता था, डर जाता था, भीत भीतर बहुत भयभीत हो जाता था, सपदी तरफ रास मैंने फेर वो खेलना छोड़ देता था, चुपचाप बैठता था, ठीक है भाई पूजा कर लीजिए, हम आपको नहीं डिस्टर्ब करेंगे। तो उसके गुणों की याद कर रहे कि मेरे डांटने पर कितना ओबीडियंट सन ऑफ ऋषि, बिल्कुल सुशील बालक की तरह हो जाता था। तो वहां राजकुमार कहे पहले, अब ऋषि कुमार कह रहे। यही दो बच्चे तो इस संसार में श्रेष्ठ माने जाते हैं, राजकुमार हो या ऋषि कुमार। जब भगवान जनकपुर गए लक्ष्मण जी के साथ, तो जनक जी पूछते हैं विश्वामित्र जी से कि ये दोनों बच्चे ये राजकुमार हैं कि ऋषि कुमार हैं, मतलब ये किसी क्षत्रिय के लड़के हैं कि ब्राह्मण के लड़के हैं। ये पूछ विश्वामित्र जी ने कहा कि ये राजा दशरथ के पुत्र हैं, ऋषि कुमार नहीं है, ये राजकुमार है। मुनिकुल तिलक की निरपकुल पालक, यह शब्द है। मैं पूछा कि ये बालक निरपकुल तिलक है कि मुनिकुल तिलक, मुनिकुल तिलक निरपकुल पालक, राजा के पुत्र हैं कि ऋषि के पुत्र हैं। तो उस तरह का सौंदर्य बिना राजकुमार के और ऋषि कुमार के हो नहीं सकता, जो तेज भगवान में था। तो राजर्षि भरत हरिण में सब कुछ आरोपित कर रहे हैं, तो राजकुमार की सुंदरता और ऋषि कुमार की सुशीलता दोनों का संजोग करा रहे हैं। ये राजकुमार भी है, ऋषि कुमार भी है, एक ही साथ कि बहुत गुण है। जो बच्चा डांट देने के बाद शांत हो जाए तो मानेगा वह अच्छा बच्चा है, डर जाए, गुरुजनों की आज्ञा का पालन करे। तो याद कर रहा है कि कभी कभी मेरे भविष्य को बिगाड़ देता था, डांट से छो देता था, दूषित करता था, तो मैं उसको डांट देता था तो अवहित करण कलाप आस्ते, करण मतलब इंद्रियां, कलाप मतलब समूह, तो समस्त इंद्रियों को बिल्कुल शांत कर लेता था, न आंख से इधर उधर देखता था, न चलता था, चुप शांत। इस तरह के गुण याद आ रहे हैं, तो ये विश्वास उनको हो रहा है कि आएगा जरूर, आएगा जरूर। अब इतना कह करके उठते हैं, विकल हो जाते हैं, आश्रम से बाहर घूमते हैं, नीचे जमीन पर दृष्टि जाती है तो पृथ्वी पर उसके उभरे हुए खूर देखते हैं, खूर की पंक्तियां देख, तब कहते हैं अरे पृथ्वी, अरे भूमि, तुमने कौन सा तप किया है जिससे उस हरिण बालक के खुर का चिन्ह तुम्हारे ऊपर उभरा है। अगर तुम्हारे तप का पता मुझे लग जाता तो मैं भी ऐसा तप करता। ये तो गोपीजन कहती है भूमि के लिए कि अरे भूमि, तुमने कौन सा तप किया है कि गोविंद का चरण कमल तुम्हारे ऊपर है। रासलीला में भगवान जब अंतर्हित हो गए तो गोपियां उनको खोजने लगी, तो कहते हैं कि देखो भूमि कितनी सौभाग्यवती है, कहीं भी कृष्ण होंगे लेकिन भूमि पर होंगे, इस पर उनका चरण कमल विराज रहा है। धन्य है पृथ्वी, धन्य है भूमि, कृत किमते कृतम तपो बतके सवांग, किमते कृतम तपो क्षिति बतके सवांग। ऐसा वो कहते हैं कि हे क्षिति, तुमने कौन सा तप किया है जिससे केशव के चरण कमल तुम पर विराज रहे। अब इनकी तो कृष्ण के स्थान पर हरिण में महत्व बुद्धि हो गई है, वाक्य वही कह रहे हैं लेकिन हरिण के संबंध से। किं वा अरे आचरितम तपस तपस्विन्या अनया, अरे इस तपस्विनी के द्वारा, इस अवनी के द्वारा कौन सा तप हुआ है, इसने कौन सा सुकृत किया। यम अवनी, यह अवनी, यह पृथ्वी सविनय कृष्ण सार तनय तनय तमितर सुभग शिवतम अखर खुर पद पंक्ति भी। इस पृथ्वी का क्या सौभाग्य है कि सविनय नम्रता से युक्त कृष्ण सार मृग का तनय, जिसका तनुतर सुभग शिवतम अखर खुर पद पंक्ति, बहुत विशेषण लगा रहे हैं। हरिण के शावक का खुर कैसा है, जिस खुर का संजोग पृथ्वी को है उसका वर्णन कर रहे हैं। कह रहे हैं तनुतर, छोटा छोटा, पहले तनुतर पर, तन मैंने छोटा, बहुत छोटे छोटे खुर हैं, उसमें सुभग बहुत सुंदर है और शिवतम मंगलमय, जिस पर भी खुर पड़ जाएगा उसका कल्याण होगा। और अखर, अखर मतलब खर नहीं है, कठोर नहीं है, मृदु है, इतनी विशेषता खुर की लगा रहे। खुर खुर के पहले जो भी शब्द है सब खुर की विशेषता बता रहा है। उस हरिण बालक का खुर कैसा है, छोटा है, सुभग है, परम सुंदर है, उतना तो सुकुमार या उतना सुंदर कमल भी नहीं है इस जगत में। और उसका खुर अखर होता है, कोई भी देखे होंगे हरिण का खुर कठोर होता है, लेकिन उसको अखर कह रहे हैं। और शुभ तो शिवतम, शिवतम का अर्थ है कल्याण कमल, जिसको वो खुर सुलभ है उसका मंगल होगा, उसका मंगल होता है। ऐसे वेद शास्त्र भी वर्णन करते हैं कि कृष्ण सार मृग जहां भी चलता है तो पृथ्वी बहुत शुभ मानी जाती है, वहां जग किया जाता है। भागवत में भी भगवान कृष्ण ने कहा है उद्धव से कि जहां कृष्ण सार मृग विचरते हैं वह भूमि पवित्र मानी जाती है, एकादश स्कंध में बताया। तो उसी को राजर्षि भरत यहां जोड़ रहे हैं, लेकिन खास करके इसी मृग के लिए जोड़ रहे हैं, और के लिए नहीं। तो तंतर सुभग शिवतम अखर, ये कितनी विशेषता दिए, एक दो तीन चार, चार विशेषता दे। अखर है मतलब परम मृदु, परम कोमल, किसी के देह पर पड़ जाए तो कट भी जाएगा, इतना कोमल है तो खुर। लेकिन वाशक्तिवश कह रहे हैं द्रविण विधुरातुरस्य कृपणस्य मम द्रविण पदवीं सूचयन्ति आत्मानं च सर्वतः कृत कौतुकं द्विजानां स्वर्गापवर्ग कामानं देवयजनं करोति। इन श्लोकों की व्याख्या बहुत की जा सकती है, लेकिन फिर भी हमें अपने लक्ष्य पर बढ़ना है तो हम थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं। मैं द्रविण विधुर हूं, अपने को कह रहा हूं द्रविड़ विधुर, द्रविड़ मतलब धन और विधुर मतलब रहित। आज हमारा धन चला गया, क्या धन चला गया? हरिण, हरिण ही मेरा धन है, तमेव सर्व मम देव देव। वही उनके लिए सब कुछ है, तमेव विद्या द्रविणम तमेव, वही धन है। कितना बड़ा धन छोड़ करके आए हैं। कहते हैं मैं द्रविण विधुर हो गया, आज मेरा धन चला गया, लेकिन हे धरती हे भूमि तुम मेरे धन को सूचित कर रही हो कि वो कहाँ है। तो हरिण के जो चरण चिन्ह उभरे हुए हैं तो उससे राजर्षि भरत को आश्वासन मिल रहा है वो कहीं है, अभी इसी रास्ते से गया। तो पृथ्वी जो है उनके धन की सूचना दे रही है कि तुम्हारा धन हे भरत तुम्हारा धन इस दिशा में गया है, तो उसके चरण चिन्ह का अनुगमन करते हुए खोजो। सो स्वयं ही कह रहे हैं कि कृपणस्य मम द्रविड़ पदवीं सूचयन्ति, तुम मेरे धन की धन के मार्ग को बता रही हो, तुम्हारे ऊपर उसके चरण चिन्ह भरे हुए। और आत्मानं च सर्वतः कृत कौतुकम द्विजानाम स्वर्गापवर कामानाम दैजनम करोति, और अपने को भी कृतार्थ कर रही हो, क्योंकि वेद कहता है कि जहां फिर संसार मृग का चरण पड़ता है तो वहां ब्राह्मण लोग यज्ञ करते हैं। तो तुम्हारा भी कृत कौतुकम, तुम्हारा श्रृंगार हुआ है, अब तक तुम इतना सुंदर कभी भी नहीं लगी थी, आज उस हरिण शावक के खुर का चिन्ह धारण करके तुम्हारा सुहाग खिल गया, सौभाग्यवती हो गई। यह बात तो केवल भगवान के लिए कही जाती है, जब भगवान आते हैं और अपना चरण कमल पृथ्वी पर रखते हैं तब पृथ्वी धन्य हो जाती है, देवता लोग इस बात को कहते हैं। लेकिन यह सौभाग्य नगण्य पशु के चलने से राजर्षि भरत कर ये पागल हो गए हैं, वास्तव में एकदम दिमाग काम नहीं कर रहा है, ठीक उल्टा कृष्ण भावना के बिल्कुल विरुद्ध। कहते हैं हमारे धन की सूचना दे रही है और अपने को भी सर्वतः कृत कौतुकम, अपने को भी अलंकृत कर रही है। कौतुक माने अलंकार, जैसे कोई स्त्री अलंकार धारण करे तो हे भूमि तुम्हारे लिए सबसे बड़ा अलंकार है हरिण का चरण चिन्ह, क्या अलंकार है, उस तरह कितने पशु घूमते रहते हैं, तो पृथ्वी का अलंकार नहीं है, पृथ्वी का अलंकार है कृष्ण का चरण चिन्ह। और उसमें वे श्लेष से कुछ और भी अर्थ करते थे, ये कृष्ण सार है, मतलब इसके जीवन के सार कृष्ण है। इस तरह मिथ्या शब्द का आडंबर जोड़ करके वे उस पर आरोप करते थे, अगर मैं कृष्ण का भक्त हूं तो ये भी कृष्ण का भक्त है, ये कृष्ण सार है, कृष्ण सारो जस्य स कृष्ण सार, कृष्ण ही जिसके जीवन के सब कुछ है वह है कृष्ण सार। लेकिन वो तो कृष्ण भावना से बिल्कुल शून्य थे, तो इस तरह से आरोप करते थे कि मैं एक कृष्ण भक्त का संग कर रहा हूं। मैं भी कृष्ण यज्ञ करना चाहते हैं, यज्ञ द्वारा वो लोग मिलते हैं, तो यज्ञ करने के लिए वे कभी कभी भूमि खोजते हैं, वन में जाकर के भूमि खोजते हैं जहां कृष्ण सार मृग पाए जाते हैं, वही यज्ञ करते हैं। तो इसीलिए राजर्षि भरत कह रहे हैं कि आज वह मृग सावक हमारे धन की सूचना दे रहा है, उसका चरण चिन्ह पृथ्वी अलंकृत हो गई, ब्राह्मण भी धन्य हो जाएंगे, वो ऐसे जगह पर यज्ञ करेंगे तो उनको अपवर्ग मिलेगा, उनको स्वर्ग मिलेगा। हमारा हरिण जो है ब्राह्मणों का उपकारी है, स्वर्ग देने वाला है, मुक्ति देने वाला है, सबका हित कर रहा है, लेकिन हाय हाय मैं विरह में मर रहा हूं, कब आएगा? इतना उपकारी, इतना सुंदर, इतना अच्छा हरिण कब आएगा जो ब्राह्मणों का उपकार करे, उनको स्वर्ग दे, वैकुंठ दे। वो हरिण नहीं देता है वैकुंठ, वैकुंठ मिलता है भगवान के भजन से या स्वर्ग मिलता है यज्ञ आदि करने से, लेकिन उसने वो कारण मान रहे हैं कि जहां कृष्णसार मृग चलता है घूमता है वहीं वो करते हैं, तो वो एक कारण हो गया। वो कोई खास कारण नहीं है, लेकिन ये कारण है कि ये हरिण ही देता है। तो तुम स्वर्ग में जो भी जाएंगे तुम्हारी कृपा से, अपवर्ग पाएंगे तुम्हारी कृपा से, पृथ्वी धान्य हो गए, लेकिन मैं ही अधान्य हूं, मैं ही हतभाग्य हूं कि तुम्हारा खूर मेरे पेट पर नहीं लग रहा है, मेरा भाग्य फूट गया, इस तरह से रो रहे। और तब तक उनकी दृष्टि चंद्रमा पर पड़ती है, सूर्यास्त हो चुका है और भगवान चंद्रमा उदित हुए, ये दोनों जगत के नेत्र हैं, ये प्रकाश देते हैं भगवान सूर्य, रात्रि में भगवान चंद्रमा सुंदर शीतल प्रकाश देते हैं। इन्हें देख करके प्रत्येक व्यक्ति को नमस्कार करना चाहिए, भगवान का तेज इनके भीतर है। देखिए राजर्षि भरत किस तरह चंद्रमा के विषय में कह रहे हैं, जब वे ऊपर दृष्टि उठाकर देखे तो चंद्रमा उस दिन पूर्णिमा का दिन था, वे उगे तो कहते हैं अति श्रीद असौ भगवान उडुपति, ये भगवान चंद्र भगवान उडुपति, एनो मृगपति मृगपति भयान मृत मातरम मृग सावकम स्वास्थ्रम परिभ्रष्टम अनुकंपया कृपण जन वत्सल परिपाति। जब वो देखे तो जो शस का चिन्ह है शशि में, चंद्रमा को शशि कहते हैं क्योंकि शस का खरगोश का चिन्ह है उनके भीतर, इसीलिए उनको शशि कहते हैं या शशांक कहते हैं। तो शशांक कुछ हरिण जैसा मिलता जुलता है, तो राजर्षि भरत की आसक्ति है तो देखते ही उन्हें ऐसा लगा कि ओ मेरा बेटा जंगल में भूल गया था तो भगवान उडुपति अपने गोद में उठा लिए हैं, कितने कृपालु वो कितना दूर है, सूर्य से भी अधिक दूर है चंद्रमा, लेकिन कहते हैं वो मेरा बच्चा भटक गया था उसको लेकर अपने गोद में रख लिया। इतनी आसक्ति है कि हरिण को ही सर्वत्र देख रहे हैं। तो कहते हैं क्या भगवान चंद्रमा उस कृपण बालक को मृग शावक को अपने गोद में लेकर के परिपाती पालन कर रहे हैं, जरूर पालन कर रहे, अपनी अमृतमय किरणों से उसको सींच रहे हैं, हम लोग सहला रहे हैं। चंद्रमा के भीतर अपने मृग की संभावना कर रहे थे, तो वर्णन कर रहे हैं चंद्रमा का उडुपति भगवान। यहां भगवान शब्द कहने का मतलब यह है कि चंद्रमा भी बहुत बहुत पुण्य किए, बिना भाग्य के यह संजोग हो नहीं सकता है कि वह बालक उनकी गोद में जाए, चंद्रमा भी बहुत तप किए हैं, ये भाग्यवान है, भगवान है। भग का अर्थ होता है सुंदर कर्म जीवों के लिए, सुकृति सुकृत किए हैं चंद्रमा, इसीलिए आज इनके गोद में हरिण बालक चला गया। पर मैं ऐसा मानता हूं कि एनम मृग शावकम, इस मृग शावक को मृगपति भयान मृत मातरम, मृगपति के सिंह के भय से जिसकी मां मर गई है, सिंह के दहाड़ने से जिसकी मां मर गई, उस मातृहीन बच्चा को भगवान चंद्रमा अपनी गोद में लेकर के पालन कर रहे हैं, निश्चित वो पालन कर रहे हैं, क्योंकि स्वास्थ्रम परिभ्रष्टम, वो मेरे आश्रम से परिभ्रष्ट हो गया था, भूल गया था, और स्व लगा करके आप कह रहे हैं कि मेरा दोष है, मुझ पापिष्ठ ने उसका केयर नहीं किया, हमारे आश्रम से भ्रष्ट हो गया। लेकिन चंद्रमा कितना भाग्यशाली है, दयालु है कि अनुकंपया कृपण जन वत्सल परिपा है, वो दीनहीन जनों का पालन करने वाले चंद्रमा अनुकंपा से भर गए दया से, और वे गोद में उठा करके पाल रहे हैं। ठीक है, लौटाएंगे जरूर, कहीं ऐसा न हो कि चंद्रमा हमारे मृग शावक को ले ले, इन्हें ही पाल रहे हैं, स्नेह कर रहे हैं। ठीक, लेकिन फिर कुछ देर के बाद ऐसा लगा, अरे नहीं नहीं, ये तो केवल शशांक है, चचिन है शस का, वो नहीं है, वो नहीं है। तब चंद्र किरणों से दाहकता का अनुभव करने लगी, चंद्रमा की किरणों में शीतलता होती है, लेकिन चंद्रमा की वही किरणें विरही जनों को जलाया करती है, यह स्वभाव।
विरह में कोयल की बोली या चंद्रमा की किरण या बसंत की हवा, ये सब विरही जनों को और दग्ध करते हैं, अच्छा नहीं लगता। जब प्रिय से विजोग होता है तो उस समय सुख की सामग्रियां ही काल जैसी लगती है, ये स्वभाव। तब चंद्रमा की किरणें जला रही हैं इनको हरिण के विरह में, तो चंद्रमा की किरणों में दाहकता का अनुभव करके और पुनः हाँ ये सोचते हैं कि जब मेरा हरिण बालक आएगा तो वो मुझे शीतलता देगा, और कभी कभी शीतलता का अनुभव करते हैं कि प्रलाप जैसा है। चंद्रमा की किरणों में कभी कभी दाहकता का अनुभव करते हैं और कभी कभी शीतलता का। तो कहते हैं कि किंवा आत्मज विश्लेष ज्वर दहन सिखा भी, मैं अपने आत्मज के अपने पुत्र के विश्लेष के ज्वर से ताप से उस तरह जल रहा हूं जैसे वन में आग लगे और कोई वृक्ष जले, ये कमल जले। उपतप्य मान हृदय स्थल नलिनीक, से कहीं आग लगे और स्थल पर उगा हुआ कमल जलने लगे वन की आग से, उस तरह से मेरा हृदय जल रहा है, मेरा हृदय अपने आत्मज के वियोग से जल रहा है। आते आते यहां आत्मज शब्द दही दिए। देखिए अब तक राजकुमार इनडायरेक्ट में कह रहे थे, वास्तव में वहां उनका आशय था भरत राजकुमार, लेकिन शायद संकोच से नहीं दे पाए, अब आत्मज दे रहे हैं। आत्मज कहता आत्मा का अर्थ होता है शरीर, और जन माने जन्म, शरीर से जिसका जन्म हुआ है आत्मा से, मतलब अपना खास पुत्र आत्मज कहा जाता है। तो कहते हैं मैं अपने आत्मज के विश्लेष ज्वर से, जो दवाग्नि की तरह है, उस दवाग्नि की शिखाओं से जल रहा हूं। मेरा हृदय कमल के समान है। दो तरह के कमल होते हैं, एक पानी में खिलते हैं और एक स्थल पर खिलते हैं। तो यहां कह रहे हैं स्थल नलिनी कमल, क्योंकि जल में कमल रहेगा और आग लगेगी तो जल के कारण कुछ रक्षा भी होगी, लेकिन वह स्थल पर कमल है, इसके झुलसने में कोई देर नहीं लगेगा। मतलब मेरा हृदय पूरा पूरा जल रहा है, और ताप क्या है, आंच क्या है, मेरे पुत्र का विरह, मेरे आत्मज का विरह, मतलब हरिण बालक का विरह मुझे जला रहा है। तो क्या हे भगवान, वह समय आएगा जब मैं हरिण बालक के साथ रहूंगा, माम उपसृतम, जब वह मेरे निकट आएगा और मेरे पास होगा, तो उस समय चंद्रमा की किरणें हमारे लिए बहुत शीतल लगेंगी। जब बच्चा हमारे साथ रहेगा तो क्या चंद्रमा शिशिर शांतानुराग गुणित निज बदन शैलामृत मय गभस्त भी स्वभयती थी। तो क्या चंद्रमा अपने किरणों से अमृत की वर्षा करके, अपने मुख कमल से किरण रूपी अमृत की वर्षा करके मुझे शीतलता देंगे? निश्चित देंगे। आज मैं अपने प्रिय के विरह में जल रहा हूं, लेकिन जिस दिन मेरा प्रिय बालक आएगा उस दिन वही चंद्रमा की दाहक किरणें मेरे लिए अमृत का काम करेंगे। श्री प्रभुपाद जी श्लोक के तात्पर्य में लिखे हैं, जो किसी व्यक्ति को बहुत जोर का बुखार हो जाता है, ज्वर हो जाता है, तो कुछ ऐसे वैद्य हैं जो मुख में पानी लेकर के और मंत्र पढ़ करके गड़गड़ा करके उस ज्वर युक्त व्यक्ति के ललाट पर पानी डालते हैं, तो उससे उसका ज्वर उतर जाता है। इसी को राजर्षि भरत कह रहे हैं, क्या भगवान चंद्रमा अपने मुख से सलिल किरण सलिल बरसा करके मेरा ज्वर दूर करेंगे? निश्चित करेंगे, लेकिन कब? जब वह हरिण बालक आएगा तब। तो उसके आ जाने पर तो आप ऐसे ही बिना बुखार के हो जाएंगे, उसमें चंद्रमा क्या करेगा, है कि नहीं? वो तो बीजोग ही ज्वर है और संजोग बस अमृत है। लेकिन इनके कहने का आशय है कि आज भगवान चंद्रमा हमें जला रहे हैं, लेकिन जब वो हरिण बालक मेरे साथ होगा तब यही मुझे शीतलता देने लगेंगे। इस तरह से विलाप कर रहे हैं। अब देखिए सुखदेव गोस्वामी अब इनके विषय में अब अपना कंक्लूजन दे रहे हैं। यह एक नमूना पेश किया गया, इस तरह से सोचा करते थे। एवं अघट मान मनोरथ आकुल हृदय, इस प्रकार अघट मनोरथ आकुल हृदय, उनका हृदय हमेशा व्याकुल रहता था। कैसा मनोरथ कर रहे थे जो अघट मान कभी पूरा होने वाला नहीं था। मनुष्य बहुत बहुत अपने प्रिय के विषय में मनोरथ करता है, लेकिन वो मनोरथ कभी पूरा होने वाला है नहीं संसार में। जो अघट मान मनोरथ, घट मान का अर्थ होता है जो होगा, जो आएगा एग्जिस्टेंस में। जो अघट मान मनोरथ, अघट मान मनोरथ, अघट मान मनोरथ आकुलस्य आकुल हृदय, अघट मान फलम अनुपलभ मार, यह मनोरथ अभिलाष मृग शिशु विषय का इत्यर्थ तेना आकुलम हृदय जस तथा भूत। बहुत मनोरथ करे थे, ऐसे हरिण आएगा, ऐसे करूंगा, ऐसे सुखी करूंगा, आगे उसको कोचिंग स्कूल में भेजूंगा, पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, नौकरी दिलाऊंगा, ये करूंगा, बहुत बहुत सोच रहे थे। कभी पूरा होने वाला मनोरथ नहीं था।